रेडियो मानव रचना 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और आप है मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ, और वक्त है बहुत सी बातें करने का आप ही की सेहत के बारे में। और सेहत में आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों के मौसम के बारे में। सर्दियों का मौसम जो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम में होती है ठंडक, लेकिन जब ये ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है अगर हम अपनी सही देखभाल ना करें। तो इन सर्दियों में कैसे रखना चाहिए आपको अपना ख्याल, ऐसे ही टॉपिक पर कुछ खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो मौजूद है सीनियर फिजिशियन फ्रॉम ओल्ड फरीदाबाद डॉक्टर के मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
दीक्षा, इस ठंडे मौसम में आप मुझे इस गर्म जोशी से स्वागत कर रही हैं, मुझे बेहद अच्छा लग रहा है
जी।
रेडियो मानव रचना के अपने परिवार और अपने श्रोताओं का मैं अभिवादन करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ जो हमें इस सर्दी के मौसम में, जहाँ टेम्परेचर लेस देन 1 डिग्री भी हो रहा है, कैसे हम अपने स्वास्थ्य का और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का और बुजुर्गों का कैसे हम ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि कुछ छोटे मोटे घरेलू नुस्खे हैं, कुछ ऐसे बचाव के टिप्स मैं दीक्षा बताने जा रहा हूँ, जो कि अगर हम लोग थोड़े थोड़े अपने जीवन में उतारें तो हम बहुत हद तक सर्दियों के और जाड़ों के कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं।
जी बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल आपसे मैं जानना चाहती हूँ। हमें बहुत ठंड लगती है, सर्दियाँ होती है तो बहुत ठंड लगती है, गर्मियाँ होती है तो गर्मी लगती है, तो हमारे शरीर को ये ठंड लगती क्यों है और कैसे लगती है?
दीक्षा, सारा एनिमल किंगडम, दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं
जी,
हम लोग भी एनिमल्स हैं
जी।
एनिमल किंगडम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे हम और आप हैं
जी,
हमारे खून में ही वो गर्मी जनरेट होती है जो हमारे बॉडी को गर्म रखती है
जी।
देखो, हमारे ऊपर ना तो फर है, ना भालू की तरह हमारे बड़े बड़े बाल हैं, ना और जानवरों की तरह हमारे पंख हैं। जैसे एक बत्तख का उदाहरण देता हूँ, बत्तख अपने बॉडी की गर्मी को अपने पंखों से बचाती है
जी। जी,
अब हमारे पास तो पंख नहीं है
जी,
और एक भालू अपने फर से, अपने कोट से, या एक डॉग भी अपने फर से अपने बॉडी की हीट को बचाता है
जी। जी,
लेकिन इंसान अभी उतना इवॉल्व नहीं हुआ है, ये एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है। शायद अगले 50,000 सालों में हमारे भी स्किन के ऊपर एक लेयर आ जाएगी, हम अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे कि हम अपनी बॉडी की हीट को बचा सकें
जी।
लेकिन तब तक हमें अपनी बॉडी की हीट को बचाने के लिए एक इनर या वुलन या कोट या एक जैकेट, एक जैकेट क्या है, एक भालू के फर की तरह ही तो है
जी। जी बिल्कुल,
उसको भगवान ने दिया है, हमें नहीं दिया है, तो हम स्टिच करके एक कोट बनाते हैं
जी। जी,
तो हम अपनी बॉडी की हीट को बचाने के तरीके करते हैं
बिल्कुल।
ह्यूमन बॉडी में ये हीट जनरेट होती है ब्लड के फ्लो से, खून का जो बहाव होता है वो हमारी नाड़ियों में, हमारी मसल्स में कुछ गर्मी पैदा करता है। और जिन लोगों की बॉडी में खून अच्छा होता है दीक्षा, जिनका हीमोग्लोबिन 13+ और 14+ होता है, उनको गर्मी सर्दी कम लगती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बिना स्वेटर पहने भी कंफर्टेबल है, और आप जैकेट्स पहने हुए हैं। शायद आपके और मेरे बॉडी में हीमोग्लोबिन उतना नहीं है जितना एक 20 साल के जवान की बॉडी में होता है
जी। जी,
सो इट इज द ब्लड दैट कीप्स अस वार्म, और हमें पूरी कोशिश करनी है सर्दियों में कि हम अपने ब्लड की लेवल्स को, अपने खून की मात्रा को अच्छा रखें, और कुछ ऐसे खाने खाएं जिनसे कि खून बनता है, खून अच्छा सर्कुलेट होता है। और अभी आगे आपको मैं बताऊंगा कि कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे नए खून को बनाने में योगदान करते हैं। और मैं अपने साथियों को या अपनी माताओं को ज़रूर चाहूँगा वो इस बात को ध्यान से सुनें कि अपने नन्हे बुन्ने बच्चों को, अपने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को क्या क्या चीज़ खिलाएं ताकि उनका खून अच्छा बने।
जी बिल्कुल, तो बहुत सी बातें करने वाले हैं हम इन विंटर्स में, कैसे रख सकते हैं आप अपना ध्यान और अपने बच्चों का ध्यान। डॉक्टर मिश्रा, हम बात कर रहे हैं सर्दियों में देखभाल के बारे में। अभी फिलहाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आपने बताया कि हमें ठंड क्यों लगती है, गर्मी क्यों लगती है, अगर ये हीट मैकेनिज्म फेल हो जाए तो इसका क्या नुकसान होने वाला है?
अब देखो, जैसे हमारा ब्लड हमारी बॉडी को गर्म रखता है, लेकिन अगर उस ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे मलेरिया हो जाए, मलेरिया का जो कीटाणु होता है उसको हमारे ब्लड सेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। या एक और उदाहरण मैं डेंगू का देता हूँ, डेंगू का जो वायरस होता है दीक्षा, वो इतनी रैपिडली हमारे ब्लड सेल्स को या प्लेटलेट्स को खा जाता है कि ये लाखों की संख्या में कम हो जाती हैं। एक मरीज है, उसकी प्लेटलेट काउंट आज 3,20,000 आ रही है और कल किया जाता है तो केवल 50,000 रह जाती है। मतलब उसके ब्लड में जो सेल्स हैं जो उसकी बॉडी को गर्म रखते थे, वो ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो उस आदमी को शिवरिंग होने लगेगी, उसको जाड़ा लगने लगेगा, वो कांपने लगेगा, रजाई ओढ़ लेगा। दिस इज अ फेलियर ऑफ बॉडी हीट मैकेनिज्म। या छोटे छोटे बच्चों को हम लोग आजकल देख रहे हैं जिन्हें निमोनिया बड़ी जल्दी हो जाता है। बच्चा रात में सोया, उसने किसी वजह से माँ की नींद लग गई, या बच्चा गीला रह गया, या उसने दूध जो रात में पिया था उलट दिया, उसकी चेस्ट वॉल गीली रह गई। उसी गीली चेस्ट वॉल में कीटाणु डेवलप हो जाते हैं, रात में उसको निमोनिया हो जाता है, और वो बच्चा आप सुबह अगर उसको देखें तो उसकी उंगलियां नीली हो जाती
हैं जी,
उसके पैर के पंजे और हाथ की उंगलियां नीली हो जाती हैं, या जो गोरे गोरे बच्चे होते हैं उनकी नाक की टिप ब्लू हो जाती है
जी,
उनके होंठ नीले पड़ जाते हैं। दीज आर ऑल साइंस दैट द बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन
जी।
ऑक्सीजन हमें चेस्ट से मिलती है, फेफड़े से मिलती है। अब फेफड़े में तो इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया में फेफड़े में सूजन आ जाती है। जब भी हमारे फेफड़ों में सूजन आएगी तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रहा है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो देखो हाथ पैर नीले पड़ने लग गए, वो क्रम्बल करने लग गया, वो शिवर होके एक छोटा सा बॉल जैसा बन जाता है, या जैसे हम लोग ठिठुराने लगते हैं
जी, जी।
हम क्यों ठिठुराते हैं? क्योंकि हमारी जो पेरिफेरल आर्टरीज हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, वो नैरो डाउन हो जाती हैं, स्किन को उतना ब्लड नहीं मिल पाता है जितना ब्लड चाहिए, और वो ठंडी पड़ने लगती है। तो हमारे हाथ पैर या होंठ या नाक जो भी एक्सपोज्ड एरियाज हैं ठंडे होने लगते हैं
जी जी।
एज अगेंस्ट द कोर टेम्परेचर, जो हमारी चेस्ट वॉल है, लिवर है, हार्ट है, किडनीज हैं, इनको कोर एरिया बोलते हैं। अगर पेरिफेरल ठंड चलती रही, मान लीजिए ये पिक्चर 24 घंटे चल गई, तो आप देखेंगे अगले दिन उसके हार्ट की रेट भी कम हो जाएगी। अब उसका हार्ट या कोर टेम्परेचर भी कम होने लगा, क्योंकि उसको सही इलाज नहीं मिला, उसको सही केयर नहीं मिली, तो आप उसके दिल की धड़कन कम हो जाएगी, उसका लिवर कम काम करने लगेगा
जी,
तो उसको भूख भी नहीं लगेगी, उसकी अंतड़ी भी सिकुड़ जाएंगी, तो उसको पॉटी भी नहीं होगी
जी।
तो देखो पेरिफेरल इन्फ्लेमेशन से जाकर जब कोर इन्फेक्शन हो जाता है तो सारा सिस्टम बंद हो जाता है। अगर यही सिचुएशन बनी रही तो 3-4 दिन में हार्ट बंद हो जाएगा। इट कैन बी सो सीवियर। और इसी को फ्रॉस्ट इंजरी या फ्रॉस्ट टिश्यू बाइट कहते हैं
जी, जी।
हमारे जो सैनिक सियाचिन में हैं या बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, कई बार उनकी सडन डेथ हो जाती है, हार्ट अपने आप रुक जाता है
जी, जी।
क्योंकि उनका कोर टेम्परेचर कम हो गया।
बिल्कुल,
हम लोग यहाँ शहर में बैठकर हमें एहसास भी नहीं होता कि एक जवान या एक सैनिक जो पेरिफेरी पर -70 डिग्री में है वो कितने बड़े खतरों से खेलता है
जी। बिल्कुल,
उसकी दिल की धड़कन कभी भी रुक सकती है।
बिल्कुल,
तो हम लोगों को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोगों को ये सब सुविधाएं मिली हैं, और इस शरीर का ख्याल हमें बेहद इंटेलिजेंट वे में रखना चाहिए दीक्षा, कि जो नियामतें भगवान ने हमें दी हैं, खून की एक एक बूंद इतनी कीमती है कि उसको बनाने में इतनी लंबी प्रक्रिया है
जी, जी।
शायद आज का युवा वर्ग समझता भी नहीं है।
बिल्कुल,
और मेरा यहाँ आने का एक मकसद भी यही है कि अपने युवा पीढ़ी को, अपने युवा श्रोताओं को ये मैं समझाना चाहूँगा कि हमारे खून का नयापन या नए खून का बनना हमारी इस सेहत के लिए, हमारी आईसाइट के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, हमारी हेयर फॉल के लिए, अगर खून की कमी होती है दीक्षा तो धीरे धीरे बाल झड़ने लगते हैं
जी।
आप लोग तरह तरह के शैम्पू लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, ये जो टीवी में एड्स दिखाते हैं इनसे हम लोग मिसगाइड होते हैं, 100-100 रुपये की शीशियाँ खरीद के लाते हैं। अरे उस शीशी से नहीं होगा भाई, उससे नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। तुम 10 रुपये की गाजर खाओ, तुम 5 रुपये के टमाटर खाओ, तुम 20 रुपये का एप्पल खरीद के खाओ, उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा बजाय कि 100 या 200 रुपये जो शैम्पू आप लगा रहे हैं उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। मेरा इस कार्यक्रम में आने का मकसद भी यही है दीक्षा, कि अपने श्रोताओं को ये समझाऊँ कि इन जाड़ों के मौसम में कैसे हम अपने खून को बना सकते हैं।
बिल्कुल, सर्दियां यानी कि बहुत खूबसूरत मौसम, लेकिन इस मौसम में जब टेम्परेचर बहुत कम होने लग जाता है तो अपनी सेहत की देखभाल हमें किस प्रकार से करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर पर कब्जा कर लेंगी। बहुत सारी ऐसी परेशानियां बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाएंगी जो हमारे शरीर को बिल्कुल खत्म सा कर देंगी। डॉक्टर के मिश्रा हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर फिजिशियन फ्रॉम ओल्ड फरीदाबाद। डॉक्टर मिश्रा, बहुत सी बातें आप बता रहे हैं, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपने बताया कि अगर सही तरीके से अपना ध्यान ना रखा जाए और सर्दियों में खुद को एक्सपोज किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे खुद को बचाएं। क्या डाइट से खुद को सही रखा जा सकता है या फिर सिर्फ गर्म कपड़े पहनने से ही हम खुद को इतनी ठंड में बचा कर रख सकते हैं?
दीक्षा, मैं बहुत सारे पेशेंट्स देखता हूँ और कई बार मुझे हैरानी भी होती है। कई बुजुर्ग मेरे पास आते हैं 60-70 साल की एज ग्रुप में, वो एक फख्र मानते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा लेता हूँ।
जी,
मैं समझता हूँ इसमें कोई फख्र की बात नहीं है, ये एक नासमझी की बात है या जिद की बात है। जब बाहर टेम्परेचर 5 डिग्री हो रहा है या 2 डिग्री हो रहा है तो ये कहाँ का हुक्मनामा है कि आप सुबह 5 बजे ठंड से नहाएं?
जी,
आई थिंक कॉमन सेंस हमें बताती है हमें अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। आप 12 बजे नहाइए, दोपहर में जरा सा गर्म पानी करके नहाइए, और कुछ नहीं है, हीटर नहीं है, लाइट नहीं है, रॉड नहीं है, तो आप एक बाल्टी पानी धूप में ही रख दीजिए, उसी में उसका टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाता है। तो ये कोई जिद वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मैं तो सुबह 5 बजे नहाता हूँ, मैं इसमें कोई बहादुरी नहीं मानता हूँ।
जी जी,
या बुजुर्गों में मैं ये भी समझता हूँ कि रोज नहाना आवश्यक नहीं है, एटलीस्ट सर्दियों के मौसम में, ये जो दिसंबर और जनवरी के 2 महीने हैं, अगर हम इसमें अल्टरनेट डे नहाएं या थर्ड डे नहाएं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, बल्कि अपने आप को ठंड से बचाना, अपने पैर और हाथों को सुन्न ना होने देना, अपनी बोन्स में, अपनी आर्टरीज को कोल्ड टेम्परेचर्स को एक्सपोज ना करना ज़्यादा समझदारी होगी।
जी जी,
इसी तरह मैं अपनी यंग मदर्स से एक अपील करना चाहूँगा कि ये कोई बहुत समझदारी नहीं है कि बच्चे को रोज नहलाया जाए, उसको जरा सा स्पंजिंग कर दीजिए, लेकिन उसके कोर टेम्परेचर को, उसके बॉडी के टेम्परेचर को कम मत होने दीजिए। अभी जो मैं आपसे बात कोर टेम्परेचर वाली कर रहा था, अगर एक छोटा बच्चा है उसका कोर टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो जाता है।
जी जी,
जरा सा उसको नहलाया, हवा लग गई और 15 मिनट बाद उसको निमोनिया हो जाता है। तो अपनी माताओं को मैं ये समझाना चाहूंगा कि ये कोई जिद की बात नहीं है कि रोज नहाया जाए। 15 दिन ठंड रहती है, 1 महीना रहती है, जरा सा बचाव रख लीजिए, आप स्पंजिंग कर दीजिए, रोज ना नहलाइए। अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को सॉक्स जरूर पहना कर रखिए, सुबह से ही उनको सॉक्स पहना दीजिए।
जी जी,
कई बार शूज उतर जाते हैं खेल कूद में या बेड में लेटने में, शूज हम हर समय नहीं पहन सकते।
जी जी,
उनको सॉक्स जरूर पहना के रखिए। टोपा पहनाना, एक अंडरवियर अंडर गारमेंट पहनना, एक गर्म वेस्ट पहनना, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को और हमारे जो बुजुर्ग हैं 70 साल के जो एडल्ट्स हैं, उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें, एक मफलर पहनना, एक ग्लव्स पहनना या एक ओवरकोट पहनना, ये एक बहुत समझदारी की और बड़ी लाभदायक चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को करनी चाहिए। अपने कॉलेज के कुछ युवाओं को देखता हूँ मैं दीक्षा, वो बिना कोट के या बिना कैप के चलने में बहुत बहादुरी मानते हैं, वो समझते हैं कि हम ही बड़े जवान हैं, या वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए गर्म कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं, या कुछ लड़कियां मैं देखता हूँ यंग गर्ल्स पार्टी में आएंगी, अपना वो साड़ी या अपने ऑर्नामेंट्स दिखाने के लिए वो स्वेटर नहीं पहनती
जी, जी।
कि मेरी माला कौन देखेगा
जी,
तो कोई भी नहीं आया तुम्हारी माला देखने के लिए, तुम स्वस्थ हो, अच्छी हो, खुश हो, हमें उसकी ज्यादा खुशी है।
जी जी,
आपकी माला देखने के लिए हम थोड़ी आए हैं पार्टी में।
बिल्कुल,
तो ये कॉमन सेंस हमारे यंगस्टर्स में होनी चाहिए कि अगर टेम्परेचर 5 डिग्री है तो एक कोट पहनने में कोई हर्जा नहीं।
जी बिल्कुल,
बल्कि जो लोग नहीं पहनते हैं और ठिठुराते रहते हैं पार्टी में, हमारा ध्यान उनकी तरफ ज्यादा जाता है कि देखो कैसे लोग हैं जो इतनी सर्दी हो रही है और फिर भी वुलन्स नहीं पहनते हैं। तो अपनी बॉडी को बचाना हमारे ही हाथ में है दीक्षा, और ईश्वर ने जो ये नियामतें दी हैं, हमारा जो स्किन का टेक्सचर है, अगर एक बार कोल्ड बाइट से ख़राब हो जाता है तो ये कभी वापस नहीं आएगा।
जी जी,
आपके माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, कि जो स्किन का कलर है, स्किन की टेक्सचर है, उसको ख़राब मत होने दीजिए। अ कोल्ड बाइट, अ फ्रॉस्ट बाइट कैन बर्न योर स्किन। एंड इट इज़ ए केमिकल बर्न विच विल नेवर बी ऑल राइट। आप कितने भी लोशन लगा लीजिए, कितने भी शैम्पू से धो लीजिए, जो आपकी स्किन का ओरिजिनल कलर है, जो आपकी स्किन की जो लिप्स की चैपिंग है, वो कभी वापस नहीं आएगी
जी।
जब तक भगवान ने हमें ये दिया है दीक्षा, हमें आईसाइट, हमें हियरिंग, हमें मेमोरी, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ विजन, ये चीज़ें कहीं बाजार में नहीं मिलती।
बिल्कुल,
आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने युवा वर्ग को ये संदेश जरूर देना चाहूँगा कि देखो, दुनिया में हम और सब चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस, विजन, मेमोरी, आईसाइट, इनकी कोई दुकानें नहीं है। ये चीज़ें दुकानों में और मॉल्स में नहीं मिलती हैं, भगवान ने हमें दी हैं और हमें उनको बचा कर रखना चाहिए।
जी बिल्कुल, सेहत की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये ऐसी कुछ खास बातें बताने के लिए हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर के मिश्रा, सीनियर फिजिशियन फ्रॉम ओल्ड फरीदाबाद। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं 8010781078 पर। डॉक्टर मिश्रा, बहुत सी बातें आपने बताई हैं कि इन सर्दियों में या फिर किन्हीं भी ठंड के मौसम में, चाहे हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी बाहर कंट्री में जाते हैं जहां पर बहुत ठंड है, या फिर लद्दाख साइड भी जाते हैं, तो वहां पर अपना बचाव कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें आप हमें बता रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, डाइट का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि सर्दियों में खाना तो हम बहुत खाते हैं, भूख तो लगती है, मजा तो आता है खाना खाने में, लेकिन इसके साथ पानी बहुत कम पीते हैं, पीने वाली चीजें जो हैं वो बिल्कुल शरीर में काफी मात्रा कम हो जाती है अगर गर्मियों के कंपैरिजन में देखा जाए, तो डाइट का कितना महत्वपूर्ण रोल है?
दीक्षा, डाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है और मुझे खुशी है कि आपने ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो शायद अपने डाइट पर इतना ध्यान नहीं देती है जितना उसको देना चाहिए। अभी मैंने जिक्र किया था कि हमारे शरीर की गर्मी हमारे खून से बनती है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स खाने चाहिए जो हमारे को खून बनाने में लाभदायक होते हैं। ज़्यादातर खून बनाने का जो प्रक्रिया होती है वो विटामिन्स से बनती है। विटामिन्स हमें हरी सब्जियों से मिलते हैं। आप कितना भी और खाना खा लीजिए, लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में या हरी सब्जी में मिलेंगे।
जी जी,
और कुदरत की इतनी मेहरबानी है हमारे देश पर, हमारे समाज पर इतनी बड़ी मेहरबानी है कि उसने इस मौसम में देखो हरी साग बहुत आती है।
जी,
गर्मियों में क्यों नहीं आती है? ये ईश्वर की बड़ी भारी देन है हमें, जो हम समझते नहीं है, कि पालक का साग, मेथी का साग, मूली, गाजर, टमाटर, हरी मटर, ये सब चीज़ें देखो भगवान ने सर्दियों में बनाई हैं। वो ये समझता है कि मेरे बच्चों को इस समय अपना खून बनाना है, तो उसने गाजर सर्दियों में बनाई है। टमाटर का रस पीजिए, टमाटो सूप बनाइए, एक ग्लास सूप पी कर जाइए। आप लोग जब ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या अपने हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग कॉफ़ी एंड टी, व्हाट ए फाइन आइडिया कि आप एक ग्लास टमाटर का जूस पिए।
जी,
जो मेरी यंग मदर्स हैं, अपने अपने हस्बैंड्स को आप लोग एक ग्लास गर्म सूप पिलाएं, वेजिटेबल सूप बनाएं, थोड़ा सा पालक, थोड़ा सा गाजर, दो टमाटर उसमें डालकर, काली मिर्च, नींबू डालकर एक जग भर के सूप बना लीजिए गरम गरम, और जो भी आदमी घर से निकलता है उसको अगर एक ग्लास गरम सूप पिलाया जाए दीक्षा, तो न केवल उसकी बॉडी का टेम्परेचर बना रहेगा, उसका फ्लूइड का इनपुट बना रहेगा, उसके ब्लड सर्कुलेशन में बहुत फ़ायदा होता है। जितना हमारा खून पतला रहता है उतना सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, बॉडी की हीट बनी रहेगी, और जो कोर टेम्परेचर की मैंने अभी बात करी थी, वो कोर टेम्परेचर हमारा शाम तक बना रहेगा।
जी जी,
ये चीज़ किसी और मैगी या बर्गर या पिज़्ज़ा या नूडल से हमें नहीं उपलब्ध होने वाला है।
जी जी,
अपने युवा श्रोताओं को, अपने प्रबुद्ध श्रोताओं से मैं ये अपील करूँगा कि इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखें। हमारे को सर्दियों में हमारे पूर्वजों ने बताया है हमें गुड़ की चीज़ें खानी चाहिए।
जी, जी।
गुड़ एक ऐसा वंडरफुल प्रोडक्ट है जो जिसकी तासीर गर्म होती है। हमारे पूर्वज, आप लोगों के परिवारों में भी साथियों, गुड़ की गजक बनाई जाती है, गुड़ की पेस्ट्रीज बनाई जाती हैं, गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं।
जी जी,
इसके साथ में अगर एक ग्लास गर्म दूध पिया जाए और कुछ हरी सब्जी या फल खाया जाए, तो हमारे बॉडी की जो ब्लड बिल्डिंग प्रक्रिया है वो सर्दियों में बनी रहेगी, हमारे बॉडी के टेम्परेचर्स बने रहेंगे, और अगर हम ये छोटी मोटी सावधानियां रखते हैं तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत दूर तक हमें साथ देंगे।
जी बिल्कुल, यानी डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अगर आप खुद को सर्दियों के हिसाब से ढालना चाहते हैं और खुद को इन सर्द हवाओं से बचा कर रखना चाहते हैं। डॉक्टर केके मिश्रा, सीनियर फिजिशियन फ्रॉम ओल्ड फरीदाबाद हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कुछ खास बातें कि सर्दियों में कैसे रखना चाहिए हमें अपना ध्यान। डॉक्टर मिश्रा, अब बात करते हैं रूम हीटर्स की। चाहे आप घर में रहें चाहे आप ऑफिस में रहें, ठंड इतनी लगती है कि कहीं ना कहीं हर किसी को हीटर की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लोअर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर्दियों में हीटर के आगे बैठना कितना सही है और कितनी देर तक बैठना चाहिए?
दीक्षा, ये आपने बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया है। लाइक एनी अदर एसेसरी, अगर हीटर्स या ब्लोअर्स का एक लिमिटेड समय तक इस्तेमाल किया जाए तहाँ तक तो वो अच्छा होता है।
जी,
आप 30 मिनट या 40 मिनट अपने कमरे को गर्म कर लीजिए, लेकिन अगर इसके बाद भी आप रूम हीटर्स चलाते हैं या ब्लोअर्स चलाते हैं तो ये कमरे के ऑक्सीजन लेवल्स को कम कर देता है।
जी।
आपके रूम में जो सराउंडिंग, आपने चारों तरफ से कमरा बंद कर लिया है, कोई वेंटिलेशन नहीं है और उसमें जो हीटर जल रहा है वो जलने की जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन से होती है। मतलब जो ऑक्सीजन आपको मिलनी चाहिए थी वो हीटर ले रहा है, तो धीरे धीरे आपके लेवल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ जाएगी और आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगेगी। और ये हकीकत भी है दीक्षा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे जिन्हें शायद हीटर्स में या ब्लोअर्स में रखा जाता है उनको गले की तकलीफ़ें ज़्यादा होने लगी हैं, टॉन्सिलाइटिस के केसेस बढ़ गए हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस, निमोनिया का मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, ब्रोंकाइटिस, पानी भर जाता है फेफड़े के अंदर, पानी भर जाता है, और ये सब तभी होता है जब हमें फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो ठीक है, ये इंटेलिजेंस हमें रखनी है कि हम एकदम खुले आंगन में भी नहीं बैठ जाएं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है दैट द कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, यू डोंट हैव टू क्लोज ऑल द रूम विंडोज एंड ऑल द डोर्स एंड सिट इन साइड लाइक ए डमी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या ब्लोअर्स का इस्तेमाल आधे आधे घंटे के लिए करिए, थोड़ी देर बाद उसको ऑफ कर दीजिए, अपने रूम की एक खिड़की ज़रूर खुली रखिए
जी,
ताकि आपको फ्रेश एयर आने का जरिया बना रहे।
जी, जी।
मैं आज ही सुबह अखबार में पढ़ रहा था दीक्षा, दिल्ली में एक परिवार है, उसने सारा कमरा बंद कर लिया, 6 आदमी घर कमरे के अंदर सो गए और अंगीठी जला ली।
जी,
इन द मॉर्निंग ऑल द 6 वेर डेड।
जी,
तो आप देखिए उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी, वो जो कोयला जल रहा था उसने सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, वो एक तरह से एस्फिक्शिएशन हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे गैस चैम्बर्स हुआ करते थे, कुछ कुछ वही स्थिति हो गई, उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रही, उनको एहसास भी नहीं हुआ, वो लोग सोए रहे और सोए सोए ही वी हैव लॉस्ट 6 लाइव्स।
जी,
हाउ डेंजरस इट इज।
बिल्कुल,
आप लोगों के माध्यम से, रेडियो मानव रचना के माध्यम से, और जो आप लोग कम्युनिटी सर्विस रेडियो स्टेशन से जो सेवा कर रहे हैं समाज की, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूं दीक्षा। मैं आपके स्टेशन डायरेक्टर गंभीर साहब की भी बहुत तारीफ करता हूं इस बात में कि आप लोग ये छोटे छोटी चीज़ें लोगों के समाचारों के लिए, लोगों की जानकारी के लिए, घर बैठे उनको द्वारे पर, घर के द्वार पर, या ये जो बातें मेरी जो लोग भी सुन रहे हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि देखो हमें अपने कमरे को बिल्कुल बंद नहीं करना है, कितनी भी ठंड हो लेकिन ताज़ी हवा आने का एक जरिया खुला रखना है।
जी,
ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत अहम बात है।
बिल्कुल,
हमने कल ही देखो 6 आदमियों की डेथ हुई है सिर्फ इसलिए कि एक ही खिड़की थी, वो उन्होंने बंद कर ली, अंगीठी जला दी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने लगी।
जी जी,
तो आप लोग जो इस रेडियो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से जो समाज की सेवा कर रहे हैं मैं उसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूं, आपके रेडियो स्टेशन डायरेक्टर गंभीर साहब की, और इनफैक्ट आप लोगों की भी, आप लोग रात दिन लगे रहते हैं तरह तरह के समाचार और ख़बरें और जानकारियां समाज को दे रहे हैं। मैं इस बात के लिए आपकी बहुत ही प्रशंसा करता हूं।
जी डॉक्टर मिश्रा, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी खास बातें आपने हमारे साथ शेयर करी जो हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही हैं कि किस प्रकार से वो रखें हर सर्दी में अपना ख्याल, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
दीक्षा। मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोता हैं हमें फीडबैक दें, हमसे सवाल पूछें, टेलीफोन करें, आपको SMS करें, और अगर कुछ और सवाल जनरेट होते हैं तो हम लोग आइंदा फिर मिल सकते हैं, फिर बात कर सकते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये समाज की सेवा करी जाए, और आप लोगों के मन में श्रोताओं जो भी सवाल हो ज़रूर मुझसे पूछिए, मुझे बेहद खुशी होगी, आनंद होगा, सम्मानित होगा कि आप लोग ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं।
जी बिल्कुल, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं 8010781076।